नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता देशभर में रैलियां कर रहे हैं। वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा, विकासशील देशों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सभी राष्ट्रों द्वारा विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों का सामूहिक संरक्षण जरूरी। अमरीका द्वारा ईरान से तेल आयात पर प्रतिबंध के प्रभाव पर चर्चा के लिए भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच नई दिल्ली में बातचीत। केंद्र ने एलटीटी पर प्रतिबंध 5 साल के लिए और बढ़ाया। और कान फिल्म महोत्सव आज से फ्रांस में शुरू हो रहा है। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का प्रचार जोरों पर है। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 59 सीटों के लिए रविवार को वोट डाले जाएंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता देश के विभिन्न क्षेत्रों में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए रैलियां कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के विपक्षी गठबंधन को महामिलावटी करार दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस चुनाव में उनकी पार्टी को गरीब महिलाओं सहित सभी का समर्थन मिल रहा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा और बसपा हमेशा जाति की राजनीति करते हैं, परंतु लोग अब इस बात को जान गए हैं और सतर्क हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वे लोगों को गरीबी से निकालना चाहते हैं, वे नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ियां पिछड़ेपन में रहें।
मैं तो माँ बहनों और बेटियों के सम्मान में खड़ा हूँ। मैं गरीब के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए खड़ा हूँ। मैं समाज की आखिरी पंक्ति में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको सशक्त करने के लिए जुटा हूं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल में रेल और सड़क संपर्क में सुधार आया है और इस दिशा में काम जारी है। नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के बक्सर में एक जनसभा की। दोपहर बाद वे सासाराम में जनसभा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया है कि 2019 में उनकी पार्टी के सत्ता में आने के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल जैसे अर्धसैनिक बलों के जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के नीमच में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री पर व्यंग करते हुए कहा कि कांग्रेस झूठे वायदे नहीं करती और अपने द्वारा किए गए वायदों को भी नहीं भूलती। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया है कि 2014 की तुलना में भाजपा 2019 में ज्यादा सीटें जीतेगी। आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रचार के दौरान उन्होंने कई स्थानों पर भाजपा के पक्ष में लहर देखी है। उन्होंने कहा कि सरकार की आर्थिक प्रबंधन के कारण इस चुनाव में मुद्रास्फीति मुद्दा नहीं है।
आजादी हासिल होने के बाद जब से आम चुनावों का सिलसिला प्रारंभ हुआ है, तब से आपने देखा होगा कि प्रायः हर चुनाव में महंगाई एक मुद्दा हुआ करता था, लेकिन 2004 और 2019 की जो चुनाव हुए हैं, दोनों चुनावों में आपने देखा होगा कि महंगाई मुद्दा नहीं बनने पाया। और मैं यह मानता हूं कि हमारी सरकार की इकोनॉमिक फ्रंट पर एक बहुत बड़ी यह कामयाबी है।
गृहमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बार बार होने वाली हिंसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और वहां के मुख्यमंत्री हिंसा को रोक नहीं पा रही हैं। लखनऊ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने कहा,
इस बार चुनाव में पीएम श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नैया डूब रही है, ये सब लोग जानते हैं। और इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि भारी जन विरोध को देखते हुए अब इनके स्वयं सेवक चुनाव में हमें कहीं भी मेहनत करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी 4 संसदीय सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है।
हिमाचल में शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर और मंडी कुल चार लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से मंडी और हमीरपुर सीटें दोनों पार्टियों के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। एक और जहां मंडी मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, तो दूसरी और हमीरपुर से जीत की हैट्रिक लगा चुके अनुराग ठाकुर का यह चौथा चुनाव है। बात अगर मुद्दों की करें तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा, केंद्रीय योजनाओं, 5 साल के विकास कार्यों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मतदाताओं को रिझा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी नोटबंदी, जीएसटी और वर्तमान सांसदों की नाकामी को मुख्य मुद्दा बना रही है। प्रदेश में भाजपा ने बीते चुनावों में चारों सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया था और उसके सामने पूर्व के प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। दूसरी कांग्रेस पार्टी इस बार किसी भी हाल में भाजपा से सीटें छीनना चाहती है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काशी ने उनके राजनीतिक और निजी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। नरेंद्र मोदी ऐप द्वारा वाराणसी के लोगों को भेजे संदेश में उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य है कि इस क्षेत्र के लोग उनके करीब हैं और वे उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में फरीदाबाद निर्वाचन क्षेत्र की प्रथला विधानसभा की असावटी के बूथ संख्या 88 पर पुनर्मतदान कराने का आदेश दिया है। माइक्रो ऑब्जर्वर सोनल गुलाटी को 3 वर्ष तक किसी भी चुनाव ड्यूटी से रोक दिया गया है। संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ इंद्रजीत सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि सोनल गुलाटी इस बूथ पर तैनात थी और उन्होंने पर्यवेक्षक को बूथ को कब्जे में लेने की सही रिपोर्ट नहीं दी थी।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आम चुनाव से संबंधित विशेष चर्चा जनादेश 2019 प्रसारित कर रहा है।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रतिदिन शाम 4:05 से 4:30 तक सुना जा सकता है।
उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नकली फोटो सोशल मीडिया पर डालने पर गिरफ्तार की गई भाजपा कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को जमानत दे दी है, लेकिन न्यायालय ने प्रियंका से कहा है कि वो इस मामले में ममता बनर्जी से माफी मांगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और इंदिरा बनर्जी की पीठ ने निर्देश दिया कि प्रियंका शर्मा जेल से रिहा किए जाने के बाद लिखित में माफी मांगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
अरे लाला जी, आप यहाँ? डॉक्टर दीदी आई है, चलिए वहाँ।
अरे बेटी, पिछली बार पूरी जांच करवाई थी, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई थी।
लाला जी, जो सोता है वो खोता है, कहते हैं जांच इलाज से बेहतर होता है।
इसी तरह हर मतदाता के लिए है जरूरी वोटर लिस्ट में कर ले अपने नाम की जांच पूरी। तो समय रहते अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करना भूले ना। याद रहे, इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना।
चेक योर नेम इन द वोटर लिस्ट ऑन nbsp.in और कॉल वोटर हेल्पलाइन 1950।
महात्योहार है
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनहित में जारी।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि विकासशील देशों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सभी राष्ट्रों द्वारा विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों का सामूहिक संरक्षण जरूरी है। संगठन के विकासशील देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक को आज नई दिल्ली में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार संगठन को वैश्विक व्यापार का अगुवा होना चाहिए और सभी सदस्य देशों के विकास में मदद करनी चाहिए। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि सभी सदस्य देशों को इस संगठन में मतभेद सुलझाने की प्रक्रिया में सुधार के प्रयास करने चाहिए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ के साथ अमरीका द्वारा ईरान से तेल आयात पर प्रतिबंध के प्रभाव पर चर्चा की। ईरान के विदेश मंत्री भारत की 2 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे थे। ईरान के विदेश मंत्री का यह दौरा ईरान से तेल खरीद पर भारत तथा 7 अन्य देशों के अमरीकी प्रतिबंधों से 6 महीने की छूट समाप्त होने के बाद हो रही है। गृह मंत्रालय ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम LJTE पर लगा प्रतिबंध अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून 1967 के प्रावधानों के तहत LJTE को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। असम में हिंसा प्रभावित हैलाकांडी जिले में दिन का कर्फ्यू हटाए जाने के बाद जनजीवन सामान्य हो रहा है। बराक घाटी क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं बहाल हो गई हैं। प्रशासन ने लोगों से सोशल मीडिया पर आ रही अफवाहों को रोकने और शांति व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है। असम विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाएं आज दूसरे दिन भी निरस्त कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास गुलपुर सेक्टर में कल रात एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। रक्षा प्रवक्ता के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले में हवेली तहसील के गुलपुर सेक्टर में अग्रिम भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर छोटे हथियारों और मोर्टार से हमला किया। भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया। थलसेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कल सैन्य तैयारियों और सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के राजौरी और अखनूर सेक्टर में सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया। भारत का आधुनिकतम हल्का प्रशिक्षण विमान हंस नेक्स्ट जनरेशन जल्द ही उड़ान के लिए तैयार हो जाएगा। बेंगलुरु स्थित नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा विकसित इस विमान को नागरिक विमानन महानिदेशालय से 9 महीने के अंदर उड़ान के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonyaya.nrc.in पर भी उपलब्ध हैं।
होगा न्याय, कांग्रेस को वोट दे।
ये आकाशवाणी है। विश्व सिनेमा का सर्वाधिक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय समारोह कान फिल्मोत्सव आज फ्रांस में शुरू हो रहा है। 12 दिन के समारोह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे कल भारतीय पवेलियन का शुभारंभ करेंगे। इसमें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष पोस्टर भी जारी किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में उच्च माध्यमिक स्तर के 110 छात्र 2 सप्ताह के युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका के अंतर्गत प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसमें पर्यावरण विज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा, खगोल विज्ञान, रॉकेट इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के अलावा कौशल विकास, संचार और नेतृत्व भावना के बारे में उन्हें अवगत कराया जाएगा। एक रिपोर्ट।
इसरो के वरिष्ठ विज्ञानियों के साथ संवाद के अवसर के साथ श्रीहरिकोटा स्थित उपग्रह उड्डयन केंद्र जाने का अवसर शिक्षार्थियों को प्राप्त हुआ है। इसरो प्रयोगालय में होने वाले अनुभव से उनको स्वयं उपग्रह निर्माण की गतिविधियों को समझने का भी अवसर मिला है। युविका कार्यक्रम प्रति वर्ष आयोजित होगा, जिससे भारत में विज्ञानियों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
चक्रवात फोनी से ओडिशा में हुए नुकसान का आकलन करने गया 11 सदस्यीय केंद्रीय दल पुरी और कटक में विभिन्न स्थानों का दौरा कर रहा है। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव विवेक भारद्वाज की अगुवाई में ये दल प्रभावित गांवों में तूफान से हुए नुकसान का आकलन कर रहा है। जम्मू कश्मीर में 300 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज सवेरे रामबन जिले के डिगडोले में भूस्खलन और चट्टानों के खिसकने के कारण अवरूद्ध हो गया। यातायात पुलिस महानिरीक्षक आलोक कुमार ने बताया कि 3,500 से ज्यादा वाहन राजमार्ग पर फंसे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेष सलाहकार ने श्रीलंका को सचेत किया है कि यदि वहां मौजूदा हिंसा पर प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण नहीं पाया गया तो इसके और फैलने की आशंका है। श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर हुए हमलों के बाद कल से शुरू हुई हिंसा में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। विशेष सलाहकार ने एक वक्तव्य में कहा है कि सरकार को हाल के हमलों और पूर्व में किए गए ऐसे हमलों की विस्तृत जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में नाइजीरिया के राजदूत जानी मोहम्मद बांदे को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनाए जाने का समर्थन किया है। महासभा में भारत के राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने एक ट्वीट संदेश में बांदे से अनुरोध किया है कि वे संस्था को और प्रभावशाली बनाएं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता देशभर में रैलियां कर रहे हैं। वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि विकासशील देशों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सभी राष्ट्रों द्वारा विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों का सामूहिक संरक्षण जरूरी। अमरीका द्वारा ईरान से तेल आयात पर प्रतिबंध के प्रभाव पर चर्चा के लिए भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में बातचीत। केंद्र ने एलटीटी पर प्रतिबंध 5 साल के लिए और बढ़ाया और कान फिल्म महोत्सव आज से फ्रांस में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।